समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात। आज सवेरे में आप सभी को फरहत नाज का नमस्कार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचारों के साथ महानगरों की खबरें, मौसम का रुख करेंगे, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का समाचार आप तक पहुंचाएंगे और अंत में इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करेंगे और याद करेंगे कुछ जानी मानी हस्तियों को। और आज मेरा साथ दे रही है मेरी सहयोगी सायरा मुश्ताबा। नमस्कार सायरा।
Namaskar Farhat, adab and a very warm welcome to all our listeners who have joined us in this very fresh episode of Aaj Savere. Aur kyunki aaj Sunday hai, toh we are assuming that you're probably relaxing in your bed, probably sipping on your coffee or tea. Kyunki aaj jo hai aap
dhoop nahi khili hui hai, toh ghar mein hi rehna munasib
hoga. Lekin kam se kam aaram to kar sakte hai. At least office ki bhag daur se aap bach sakte hai. And listen to our show in which we bring you an amalgamation of news reports and we of course have a metro news section taki आप भी जाने कि आपके अपने शहर में क्या कुछ खास चल रहा है। और मौसम का तो कुछ तो इशारा दे दिया, एटलीस्ट दिल्ली के मौसम का
जी, कि आज कोहरा छाया रहेगा, धूप जो है वो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि वो खिलेगी।
Yes, लेकिन कोई बात नहीं, सर्दियों का अपना मजा है। एंड व्हेन द हार्ट्स आर वार्म विद लव, प्यार मोहब्बत की अगर बात चलिए तो आज एक बहुत ही मशहूर शायर को भी हम लोग याद करेंगे इन आवर लास्ट सेगमेंट, जिनका एक बड़ा फेमस और खूबसूरत शेर है
जी।
अगर दर्द मोहब्बत से ना इंसान आशना होता, ना कुछ मरने का गम होता, ना जीने का मजा होता।
क्या बात है, इस मौसम के लिए बहुत ही खूबसूरत सा शेर है।
सो
युवाओं के लिए भी जो मोहब्बत को जो है वो तरजीह देते हैं।
सिर्फ युवा क्यों, फरहत दिल पे झुर्रियां कब आती है? As my mother says, sometimes I think romance is the spice of life, isn't it? Anyway, but romance जरूरी नहीं सिर्फ इंसान से हो, बहुत से लोगों को अपनी किताबों से रोमांस होता है, लिटरेचर से होता है, म्यूजिक से होता है, बट नॉनदरलेस ऑफकोर्स मोहब्बत बहुत जरूरी है। And let's start with the headlines.
जी बिल्कुल, और हम सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मन की बात से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 118वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम के हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा।
Prime Minister Narendra Modi has welcomed the naming of the iconic cultural centre in Jaffna, built with Indian assistance, as Thiruvalluvar Cultural Centre. In a social media post, Mr. Modi said, "It is also a testament to the deep cultural, linguistic, historical and civilizational bonds between the people of India and Sri Lanka." Union Home Minister Amit Shah will attend the 20th Foundation Day celebrations of NDRF in Vijayawada, Andhra Pradesh today. On this occasion, the Home Minister will inaugurate and lay the foundation stone for projects worth over 200 crore rupees. The premises of three important centres, including the southern campus of the National Institute of Disaster Management, campus of the 10th Battalion of NDRF, and the premises of Regional Response Centre in Supol will be inaugurated today. Mr. Shah will also lay the foundation stone for a new integrated indoor shooting range at the National Police Academy, or NPA, in Hyderabad, where IPS probationary officers will be trained in shooting skills. The integrated indoor shooting range will be 50 meters long and will have 10 lanes, allowing 10 individuals to practice shooting simultaneously. During this visit, the Home Minister will also inaugurate the state government's regional forensic science laboratory building in Tirupati.
विश्व बैंक ने भारत के लिए 6.7% की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है, जो वैश्विक वृद्धि से 2.7% अधिक है। विश्व बैंक के वैश्विक आर्थिक अनुमान GEP रिपोर्ट के जनवरी 2025 संस्करण में कहा गया है कि भारत अगले दो वित्तीय वर्षों के लिए सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखते हुए वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर अपना दबदबा बना सकता है। GEP रिपोर्ट ने इसके लिए सेवा क्षेत्र और पुनर्जीवित विनिर्माण आधार को मजबूत करने के संबंध में सरकार की परिवर्तनकारी पहलों को श्रेय दिया है। ये उपाय बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण से लेकर करों को सरल बनाने तक घरेलू विकास को बढ़ावा दे रहे हैं और भारत को वैश्विक आर्थिक स्थिरता के रूप में स्थापित भी कर रहे हैं।
The Indian mobility industry is expected to double and surpass $600 billion by the year 2030. A report by Google and Boston Consulting Group said, according to the Think Mobility report, emerging revenue pools such as electric, shared and connected mobility are poised to contribute $100 billion to the total market by the year 2030, while a majority of the revenue will come from classic revenue pools comprising classic components, sale of new, internal combustion engine vehicles, finance and insurance, etc. The report said that around 51% of respondents in the study expressed concern on non-availability of electric vehicles charging infrastructure, 45% about high vehicle cost, 31% about battery life, and 20% on a variety of models for four-wheelers electric vehicles. According to the report, women now influence 52% of decision-making in the EV space, surpassing the 38% for internal combustion engine or ICE vehicles.
और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में अब तक 7,72,00,000 से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। हमारे संवाददाता इस समय प्रयागराज में हैं, जो हमें पल पल की खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कैसा चल रहा है महाकुंभ का ये महापर्व।
तीर्थराज प्रयागराज में संगम तट पर सनातन आस्था और संस्कृति का महापर्व महाकुंभ अपने चरम पर है। ये विश्व का सबसे बड़ा मानवीय और आध्यात्मिक सम्मेलन भी है। महाकुंभ में मानवता के महापर्व में देश के कोने कोने से अलग अलग भाषा, जाति, पंथ और संप्रदाय के लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ पर आए श्रद्धालु साधु संन्यासियों का आशीर्वाद ले रहे हैं और मंदिरों में दर्शन करके अन्न क्षेत्र में एक ही पंगत में बैठकर भंडारों में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। एकता, समता और समरसता का महाकुंभ सनातन संस्कृति के मूल्यों का सबसे बड़ा मंच बना हुआ है। महाकुंभ न केवल भारत की सांस्कृतिक विविधता में समाई हुई एकता और समता के मूल्यों का सबसे बड़ा प्रदर्शन स्थल है, जिसे दुनिया भर से आए पर्यटक और पत्रकार देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह पाते हैं। वो देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग भाषा भाषी, रहन सहन और रीति रिवाज को मानने वाले एकता के सूत्र में बंधे संगम में स्नान करने चले आते हैं। साधु संन्यासियों के अखाड़े हो या तीर्थराज के मंदिर और घाट, बिना किसी रोक टोक के यहाँ श्रद्धालु दर्शन और पूजन करने जा रहे हैं। संगम क्षेत्र में चल रहे अनेकों अन्न भंडार सभी भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए दिन रात खुले हुए हैं। महाकुंभ मेले में भारत की विविधता इस तरह समरस हो जाती है कि उसमें किसी तरह का भेद कर पाना संभव नहीं है। महाकुंभ नगर से आज सवेरे के लिए निखिल कुमार।
वहीं जल शक्ति मंत्रालय के नमामि गंगे मिशन ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में एक भव्य नमामि गंगे मंडप भी स्थापित किया है। ये मंडप गंगा नदी के संरक्षण और स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक अनूठा माध्यम बन गया है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी हो, रचनात्मक प्रदर्शन हो या फिर सूचनात्मक जागरूकता के साथ साथ मंडप में सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया है।
महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
And well, Farhad, so we all know that the devotees are taking the holy dip in the Triveni Sangam. But beyond the Sangam, the Mahakumbh has also ignited tourism across Uttar Pradesh. And not just tourism, obviously tourism boom ho raha hai, but business bhi kitna zyada ho raha hai. There was a story about a tea stall, making money worth 2.5 crore rupees per day. Imagine, that's quite a lot. So I think that's a big boost to tourism and business across the state. Let's hear more from our correspondent.
After attending the Mahakumbh in Prayagraj, devotees and tourists from across the country and abroad are now thronging other pilgrimage sites in Uttar Pradesh. The sacred places such as Ayodhya, Varanasi, Vindhyachal, Srinivaspur and Chitrakoot have seen a sharp increase in visitors. Talking to Akashvani News, a devotee from West Bengal, Tapan Roy, appreciated the arrangements made at the Mahakumbh and said that from Prayagraj, he has also planned to visit some other places including Ayodhya and Varanasi.
The vyavastha hai pura Kumbh mein laga बहुत ही बढ़िया है. मैं लोकल प्रशासन जो है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ इतना सुव्यवस्था करने के लिए. लोग आराम से दर्शन किए हैं.
The visits of devotees and pilgrims to these places have significantly contributed to local employment and boosted businesses in travel, hospitality and transportation. आनंद कुमार फॉर आकाशवाणी न्यूज प्रयागराज.
और अब मौसम का रुख कर लेते हैं. समूचे उत्तर भारत सहित देश के कई हिस्सों में सर्दी का प्रकोप जारी है. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश इलाकों में धुंध और घना कोहरा छाया हुआ है. मौसम विभाग ने कहा है कि मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उपहिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 21 जनवरी तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा. वहीं तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में भी कहीं कहीं तेज वर्षा का आज अनुमान व्यक्त किया गया है. और इसके अलावा कोमोरिन और मन्नार की खाड़ी से सटे इलाकों में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चल सकती है और मछुआरों को इन इलाकों में नहीं जाने की सलाह भी दी गई है.
In some international news, well, the ceasefire agreement between Israel and Hamas in Gaza will come into force at around 12 noon Indian time today. Earlier yesterday, Israel's Security Cabinet approved the Gaza ceasefire agreement that involves the exchange of dozens of hostages held by Hamas for Palestinian prisoners in Israeli jails and a temporary pause in the 15-month-long conflict. But hours before the ceasefire is due to go into effect, Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu said that Gaza ceasefire agreement may be temporary and Israel retains the right to resume Gaza fighting. He has asked Hamas to provide a list of 33 hostages to be freed in the first phase today. Under the first phase of the agreement, Hamas has agreed to release 33 hostages, including children, women and individuals over 50 years of age. In return, Israel will release 50 Palestinian prisoners for each female Israeli soldier freed by Hamas and 30 prisoners for other female hostages.
और अब खेल खबरों का रुख कर लेते हैं. हॉकी इंडिया लीग में कल रांची में यूपी रुद्राज ने टीम गुनासिका को 1-0 से हरा दिया. इस जीत के साथ ही यूपी रुद्राज की टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है. एक अन्य मैच में हैदराबाद तूफान्स ने अभी तक अजय रहे तमिलनाडु ड्रैगन्स के विजयी रथ को रोक दिया. हैदराबाद ने तमिलनाडु को 4-0 से शिकस्त दी. इस शानदार जीत के साथ हैदराबाद तूफान्स लीग जीतने के दावेदारों में शामिल हो गया है.
In Khoko World Cup, the Indian men's and women's teams have showcased their impressive performance in the semi-final matches, securing their spots in the finals. More from our correspondent.
भारतीय पुरुष टीम ने कल इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुए रोमांचक सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 62-42 के स्कोर से हराया. पहले टर्न में दक्षिण अफ्रीका की मजबूत शुरुआत के बावजूद भारतीय टीम ने अगले टर्न में जोरदार वापसी की. तीसरी टर्न में दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय डिफेंडरों को कड़ी चुनौती दी, लेकिन भारतीय टीम ने अपना स्वाभाविक खेल खेलते हुए नियंत्रण हासिल किया और आखिरी टर्न में जीत दर्ज की. इस मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी गौतम एमके को बेस्ट प्लेयर चुना गया, जबकि सचिन भार्गव को बेस्ट डिफेंडर का पुरस्कार दिया गया. दक्षिण अफ्रीका के बोंगानी मत्स्वेनी को बेस्ट अटैकर का खिताब मिला. भारतीय पुरुष टीम का अब फाइनल में नेपाल से सामना होगा. नेपाल की पुरुष टीम सेमीफाइनल मैच में ईरान के खिलाफ 72-20 से शानदार जीत के बाद फाइनल में पहुंची है. इस बीच भारतीय महिला टीम ने भी शानदार प्रदर्शन से दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम को 66-16 से हराकर फाइनल में जगह बनाई. शुरुआत से ही भारतीय टीम ने अपनी रणनीति से दक्षिण अफ्रीका को काबू में रखा और पूरे मैच में अपना दबदबा बनाए रखा. इस मैच में भारत की वैष्णवी पवार को बेस्ट प्लेयर और निर्मला भाटी को बेस्ट डिफेंडर चुना गया. दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी सिनेथेम्बा मोसिया को बेस्ट अटैकर का पुरस्कार मिला. फाइनल में भारतीय महिला टीम का सामना नेपाल की महिला टीम से ही होगा. नेपाल की महिला टीम ने युगांडा के खिलाफ 89-18 से बड़ी जीत के साथ फाइनल में जगह बनाई है. आज सवेरे के लिए अभिषेक कपिल.
और सारे इतनी सारी खबरों के बाद अब महानगरों की खबरों का भी रुख कर लेते हैं कि क्या हो रहा है खास चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में.
Yes, Farah, let's start with Shehri Chennai. The Greater Chennai Corporation sealed an unauthorized building on the arterial road yesterday. The building was constructed in 2010 and the additional floors were constructed in the year 2018. The building currently houses commercial establishments and a gym. Based on a complaint, the authorities inspected the building and sealed it. Further investigations are underway to determine the extent of violations and take necessary action. Another news coming in from Chennai, the Madras High Court has directed the Tamil Nadu government to initiate immediate action to prevent illegal mining from government land in the Kosasthalai River Basin. The order was passed by a division bench of Justice S.M. Subramaniam and Justice V. Lakshmi Narayanan. The government submitted that all actions were initiated to prevent illegal mining. The permissible limit alone was to be allowed as per the license and the quantum permitted to the licensee. The government also informed in the court that special task forces were constituted for the effective prevention of illegal mining of sand.
वहीं अगर बात की जाए राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर की तो दिल्ली नगर निगम ने कल चांदनी चौक के ऐतिहासिक टाउन हॉल में अपनी हेरिटेज वॉक श्रृंखला के हिस्से के रूप में उर्दू और फारसी शायरी एक परिचय विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उर्दू और फारसी शायरी के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक महत्व पर विमर्श के लिए प्रतिष्ठित विद्वानों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शरीफ हुसैन कासिमी और प्रोफेसर अलीम अशरफ खान ने अपने व्याख्यान में उर्दू और फारसी के विकास, उसकी प्रासंगिकता और हिन्दी में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। इस दौरान निगम आयुक्त अश्विनी कुमार ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के महत्व को स्वीकारते हुए इस कार्यक्रम की प्रशंसा भी की। वहीं दिल्ली पुलिस ने राजधानी के कोटला मुबारकपुर क्षेत्र से मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1.5 किलोग्राम से अधिक मात्रा में उच्च गुणवत्ता का गांजा जब्त किया है। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर शहर में लागू आदर्श आचार संहिता को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने विशेष अभियान भी चलाया हुआ है।
मूविंग ऑन टू बेंगलुरु, Karnataka Minister for Rural Development and Panchayati Raj, Priyank Kharge, met Union Agriculture Farmers Welfare and Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan in Bengaluru yesterday, seeking relaxation in guidelines to implement the PM Gram Sadak Yojana. In the memorandum submitted to the Union Minister, the state government has requested that the guidelines for implementing PM Gram Sadak Yojana be relaxed to include road connectivity to habitations having below 500 population. This relaxation is sought as all the habitations with over 500 population have road connectivity in the state.
और अब महाराष्ट्र का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के सभी 37 जिलों के लिए संरक्षक मंत्रियों की सूची कल आधिकारिक रूप से घोषित की गई। सरकारी प्रस्ताव के अनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गढ़चिरौली जिले का संरक्षक मंत्री नियुक्त किया गया है, जो जिले के समग्र विकास और समन्वय की जिम्मेदारी संभालेंगे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थाने जिले की देखरेख करेंगे, जबकि उनके समकक्ष उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को पुणे और बीड़ दोनों जिलों के संरक्षण मंत्री की भूमिका सौंपी गई है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बदलने में प्रौद्योगिकी की क्रांतिकारी क्षमता है। कल मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में पैन आईआईटी वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी 2025 सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वास्थ्य सेवा की कमियों को दूर करने में प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
Moving on to Hyderabad, the Telangana government has signed an MOU with ST Telemedia Global Data Centres, India, to establish a state-of-the-art data centre campus in Hyderabad. The Chief Minister's office informed this in a social media post. The delegation from the state government, led by Chief Minister Revanth Reddy, along with IT and Industries Minister Sridhar Babu, signed the MOU, which involves an investment of 3,500 crore rupees for the AI-ready campus. The release stated that the campus is expected to have a capacity of up to 100 megawatts, making it one of India's largest data center projects.
वहीं पश्चिम बंगाल में सियालदह की एक अदालत ने कल आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले में संजय रॉय को दोषी ठहराया है। मामले की अगली सुनवाई कल होगी। अदालत कल ही दोषी को सजा सुना सकती है। न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा है कि सीबीआई ने जो साक्ष्य सौंपे हैं उनसे साबित होता है कि संजय रॉय इस घटना में दोषी हैं। महानगरों में अब मौसम की बात कर लेते हैं। तो सारा, सबसे पहले हमने जो शुरुआत में ही राजधानी दिल्ली के मौसम की बात बता दी है कि शीतलहर का अनुमान है और कोहरा जो है आज दिन भर छाया रह सकता है और हल्की बारिश भी हो सकती है। लेकिन अब मौसम विभाग का अनुमान बता दें तो आज का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लेकिन मुंबई में आसमान साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कोलकाता में भी आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान रहेगा 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
And if you talk about the three southern cities of Chennai, Bengaluru and Hyderabad, all three cities are expected to have a cloudy sky today. Chennai will have a partly cloudy sky with some possibility of rain or thunderstorm. The temperature will hover between 23 and 28 degrees Celsius, while Bengaluru will have some mist in the morning. And the minimum temperature was 17 in Bengaluru, while maximum will be around 28 degrees Celsius. Hyderabad will have a partly cloudy sky with some haze and temperature in Hyderabad will hover between a minimum of 17 degrees Celsius and a maximum of 28 degrees Celsius.
और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। तो आज है भारतीय राज्य त्रिपुरा में कोको बोरक भाषा के विकास के लिए मनाए जाने वाला कोको बोरक दिवस। जी हां, भारत के त्रिपुरा में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम है ये। और इसके अलावा ये दिन त्रिपुरी लोगों की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने का भी दिन है। तो आइए सुन लेते हैं कोकबोरोक भाषा में ये सांस्कृतिक गीत।
And well, today we are also observing the National Disaster Response Forces Raising Day, which is observed every year on 19th of January. NDRF was raised on this day in the year 2006 as the main disaster response force of the country. Being a specialized disaster response force, NDRF rescuers have saved lakhs of lives in various disasters and are always committed to its motto, Apada Seva Sadaiv Sarvatra. Presently, the NDRF comprises 16 battalions drawn from CAPF, namely the BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB and Assam Rifles. Since its inception, the NDRF has continually demonstrated expertise and compassion in handling various disaster scenarios, earning the trust and gratitude of millions. Notable instances include the successful rescue operations during the Bellary building collapse in 2010, the Uttarakhand cloudburst in 2013, and a tunnel collapse in Silkiara village in Uttarkashi, Uttarakhand on 12th of November 2023. NDRF is also deputed abroad for rescue operations, and during the cyclone Hudud in October 2014 and earthquake in Nepal in April 2015, NDRF's rapid deployment and effective rescue operations played a vital role. Furthermore, the NDRF's expertise extends beyond traditional rescue operations to address chemical, biological, radiological and nuclear challenges.
और सारा, कुछ अन्य अगर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हम पाते हैं सन 2020 में आज ही के दिन भारत ने परमाणु हमला करने में सक्षम K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आंध्र प्रदेश के समुद्री तट से दागी गई इस मिसाइल की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है।
And I take you back to the year 1993 when the Czech Republic and Slovakia joined the United Nations. Also in 1979, Kokborok, as you said, was officially recognized as a language in the state of Tripura. In 1931, the first roundtable conference was held in London and it ended today. This conference was attended by Dr. B.R. Ambedkar as well. In 1977, world's largest crowd, that is, At that time, 12.7 million gathered for the Kumbh Mela. Aur aaj wo karodon kya matlab bahut zyada magnitude views ka badh gaya. So we have seen that, you know, every year it has been the largest gathering.
Bilkul. Aur sun 2020 mein khelon mein bhi ek mahatvapurn uplabdhi darj ki gayi. Virat Kohli one day cricket mein sabse tez 5000 run banane wale kaptan bane. Inhone Australia ke khilaf teesre aur nirnayak one day match mein Bengaluru ke Chinnaswamy Stadium mein Michelle Starc ki gend par chauka lagakar ye uplabdhi hasil ki.
And now if we remember some of the personalities for us, the first on our list is a very, very brave king. Or unko to keh sakte hain ki bravery aur chivalry ka jo hai epitome mana jata hai. We are talking about Maharana Pratap. On his death anniversary, we are remembering him. And we all know that he was the king of the kingdom of Mewar in the present day state of Rajasthan from 1572 until his death in 1597. He is notable for leading the Rajput resistance against the expansionist policy of Mughal Emperor Akbar, including the Battle of Haldi Ghati and the Battle of Dewar.
वहीं भारत की पहली फिल्म बनाने वाले दादा साहेब त्रोण्णे की आज पुण्यतिथि है. जब भारत में सिर्फ विदेशी फिल्में ही दिखाई जाती थीं, तब 1912 में दादा ने ये फिल्म बनाई थी. फिल्म श्री पंडुलिक ये पहली फिल्म तो थी, लेकिन विदेशियों की मदद से बनी इस फिल्म की जगह एक साल बाद 1913 में आई दादा साहेब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र को पहली भारतीय फीचर फिल्म माना गया. तो आइए सुन लेते हैं इसी फिल्म से ये खूबसूरत संगीत.
गोरी गोरी चांदनी हो, गोरी गोरी चांदनी और पूनम की रात रे मीठी मीठी हो, मीठी मीठी साजना से होगी मन की बात रे, होगी मन की बात रे. गोरी गोरी चांदनी हो, गोरी गोरी चांदनी.
1933 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने का सुझाव भी दादा साहेब तोड़ने ने आदर्श ईरानी को ही दिया था.
We're also remembering a very celebrated theater and film personality from West Bengal. We are remembering Bijon Bhattacharya today on his death anniversary, an eminent playwright and dramatist. He was born in Faridpur, which is now in Bangladesh, in a Bengali Brahmin family. And he also became a member of IPTA or the Indian People's Theatre. And agar unke jo dramas or works ki baat kare to Agul Na Banna, Jawan Vandi, Kalanka, Mara Chand and Gotrantar are some of his famous works.
Ji, Bangla ki aapne baat kari to ek aur Bangla abhineta ko hum yaad kar lete hain, Soumitra Chatterjee, aur jinhe 2001 mein Rashtriya Puraskar jo hai wo nawaza gaya. और सन 2011 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया. इन्हें अभिनेता प्राण मनोज कुमार और अभिनेत्री विजयंती माला पर वरीयता देते हुए इस पुरस्कार के लिए चुना गया. सौमित्र चटर्जी प्रथम बांग्ला व्यक्ति थे जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था. तो आइए सुन लेते हैं उन्हीं की फिल्म से ये खूबसूरत सा बांग्ला गीत.
दिन नहीं रात नहीं पृथ्वी टा घूर छे तो घूर छे, रात जाए दिन आशे सूरज आबार हासे.
अपूर संसार, तीन कन्या, देवी चारुलता और घरे बाहरे जैसी कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया.
यस, इन फैक्ट इन द अपूर ट्रिलॉजी, अपूर संसार व्हिच वाज द थर्ड पार्ट, ही वेंट ऑन टू बिकम एज द एडल्ट अपू. एंड ऑफ कोर्स हिज वर्क विद सत्यजीत रे इज वेल नोन. इन फैक्ट लास्ट ईयर अ वेरी गुड बुक ऑन हिज यू नो ऑन हिज लाइफ, ऑन हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू बंगाली सिनेमा, टू इंडियन सिनेमा रादर, इट हैज कम आउट बाय पेंगुइन रैंडम हाउस. I think it's worth a read. And kya ittefaq hai Farhat ki aaj zyada tar personalities Bengal ki hain. We are also remembering Devendranath Tagore today on his death anniversary. And we all know that belonging to the celebrated Tagore family, which we can call as the first family of Bengal, well, he was a philosopher and religious reformer who was active in the Brahmo Samaj. He joined Brahmo Samaj in the year 1842 and was also the founder of the Brahma religion, which today is synonymous with Brahmoism. And we all know that he had some very, very accomplished children, Rabindranath Tagore being one of them.
जी बिल्कुल. और आज भारत की ऐसी महिला जिन्होंने अपने जनकल्याणकारी कार्यों से जो है वर्ष 2005 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो प्राप्त किया. जी हम बात कर रहे हैं विश्वनाथन शांता की, जिनकी आज पुण्यतिथि है. डॉक्टर वी शांता ने चेन्नई कैंसर इंस्टीट्यूट में कैंसर संबंधित बीमारियों पर भी काम किया और उसे उपेक्षित क्षेत्र में इलाज तथा अनुसंधान दोनों को अपने निर्देशन में संपन्न किया. उनके द्वारा जनकल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया.
एंड फरत, इफ यू रिमेम्बर की शो की शुरुआत में एक शेर पढ़ा था, अगर दर्द मोहब्बत से ना इंसान आशना होता, ना कुछ मरने का गम होता, ना जीने का मजा होता. यस, दिस फेमस शेर वॉज बाय ब्रिज नारायण चकबस्त, हु वी ऑल नो वॉज अ वेरी सेलिब्रेटेड उर्दू पोएट. एंड ही बिलोंग टू अ कश्मीरी पंडित फैमिली, बट ही सेटल्ड इन नॉर्थ इंडिया एंड बॉर्न नियर फैजाबाद नियर लखनऊ इन द ईयर 1882. हिज फादर father, Pandit Udit Narayan Chakrabarty, was born in Lucknow. And ज्यादातर उनका जिंदगी का कह सकते हैं अंश लखनऊ में ही बीता है, जहां पे उनकी पढ़ाई लिखाई हुई. बट उनकी अगर शायरी की बात की जाए तो कुछ इस तरह से, क्योंकि आई थिंक लव और लाइफ एंड डेथ आर सम ऑफ द वेरी फेवरेट टॉपिक्स ऑफ ऑल द राइटर्स एंड पोएट्स. तो कुछ उनका एक शेर था, जिंदगी क्या है अनासिर में जहूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना.
बहुत खूब. और इस समय दिल्ली में हेरिटेज वॉक भी चल रहा है, जहां पर उर्दू को जो है वो बढ़ावा भी दिया जा रहा है, क्योंकि कहा भी जाता था कि अगर उर्दू सीखनी है या फिर मोहब्बत में कुछ शायरी सीखनी है तो उर्दू को पहचानिए.
यस, एब्सोल्युटली. तो आज हमने ब्रज नारायण चकबस, जो कि बहुत ही सेलिब्रेटेड उर्दू शायर रहे हैं, उनको याद किया. एंड अब जो है वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है फरहत, सो आई थिंक इट्स टाइम टू कॉल अ रैप. स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in, listeners. Have a great weekend.
Namaskar. Namaskar.